समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
हर सुबह हमें 24 नए घंटे देती है। सवाल बस इतना है कि हम उनसे क्या बनाते हैं। कभी एक अच्छा काम, कभी एक बेहतर सोच, और कभी एक ऐसा प्रयास जो आने वाले कल को मजबूत बना दे। आज राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है, जो हमें याद दिलाता है कि ईमानदारी से की गई छोटी कोशिशें भी बड़े बदलाव ला सकती है। इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ आकाशवाणी गोल्ड पर आज सवेरे के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नीना आरेकर। नमस्कार नीना।
हेलो वैष्णवी, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। Actually, Vaishnavi, the National Productivity Council begins observing National Productivity Week to mark its 68th Foundation Day. And Zig Ziglar said, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. The theme this year is clusters as growth engine, maximizing productivity in micro, small and medium enterprises, MSMEs. As management expert Peter Drucker said, productivity is not everything, but in the long run, it is almost everything. We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 12th of February 2026. We begin with the headlines.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार सृजन और विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में मजबूत अवसंरचना और श्रम प्रधान क्षेत्रों पर बल दिया है। लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस वर्ष के बजट में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के लिए 12 लाख करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। ये सकल घरेलू उत्पाद का 3.1% है और 2025-26 के संशोधित अनुमानों से 11.5% अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देंगे।
5 रीजनल मेडिकल हब्स मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उसके साथ साथ 1 लाख अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स उस एक स्कीम के द्वारा होने वाले हैं, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के उस बड़ा स्कीम के द्वारा। फिर 5 न्यू इंडस्ट्रियल टू टेक्सटाइल सेक्टर टू लेदर सेक्टर मेजर पार्क्स जो बना रहे हैं, उसमें भी उद्योग और जॉब्स होने का संभावना क्लियरली दिखता है।
Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has said BJP will move a privilege notice against leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, for misleading the House and making baseless statements during the discussion on union budget. The minister was talking to reporters in the Parliament premises yesterday. Mr. Rijiju accused the Congress leader of making useless and false allegations against Prime Minister Narendra Modi.
We are going to file a privilege notice against Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. There is a very clear-cut rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha. When a member intends to make serious charges of allegation against another member, then you have to make a notice and also substantiate the allegation.
The textile industry has hailed the interim trade agreement achieved between India and United States. Director of Alok Industries Limited and President of Reliance Industries Limited, Anil Rajvanshi, said the agreement will increase business between India and United States. He added that the deal will benefit over 4.5 crore people in the textile sector. Mr. Rajvanshi also said the framework will also generate employment and boost productivity in the industry.
This agreement will pave way for India's exports, especially where the larger employment sectors are involved, like textile. We have a scope of about $10 to $15 billion worth of exports increasing in textiles alone. Then the footwear, handicrafts, gem and jewelry, chemicals. So there are many this thing. Then secondly, pharmaceutical, where the tariff is become zero. Similarly, some certain electronic parts, certain automobiles. So I think from the point of view of textiles, this will be a boom for textile industry for increasing the exports to America.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोल्स रॉयस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तूफान एरगिन बिलगिक से मुलाकात की. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत रोल्स रॉयस की गतिविधियों का देश में विस्तार करने और देश के नवाचारी तथा ऊर्जावान युवाओं के साथ साझेदारी करने की उत्सुकता का स्वागत करता है.
The Central Board of Secondary Education, CBSE, will implement on-screen marking, OSM, for evaluation of Class 12 answer books from this year. However, evaluation of Class 10 answer books will continue in physical mode as before. CBSE Examination Controller Sanyam Bhardwaj said that the board has decided to introduce on-screen marking, OSM, for the evaluation of Class 12 answer books beginning with this year's examination in its continuous effort to enhance efficiency and transparency. The official explained the move will improve coordination and reduce manual intervention besides eliminating totaling errors.
बांग्लादेश में आज कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है. मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगा. 299 निर्वाचन क्षेत्रों के 42,789 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे. निर्वाचन आयोग के अनुसार 12,77,00,000 मतदाता मतदान के पात्र हैं. एक टेलीविजन संदेश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन ने नागरिकों से शांतिपूर्वक मतदान करने और परिणामों को स्वीकार करने का आग्रह किया.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met US President Donald Trump at the White House. The meeting lasted about 3 hours and was held entirely behind closed doors. Netanyahu did not comment afterwards. However, President Trump later called the meeting very good in a post on Truth Social, but said no definitive outcome was reached. He said he insisted that negotiations with Iran continue as the US pushes for a nuclear deal with Tehran. The US president added that a deal would be preferred, but if Iran refuses, they will just have to see what the outcome will be.
और अब खेल की बात कर लेते हैं. T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला नामीबिया से होगा. ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. बालागोला में सुबह 11 बजे से श्रीलंका और ओमान आमने सामने होंगे. उधर मुंबई में दोपहर 3 बजे से नेपाल का मुकाबला इटली से होगा. प्रतियोगिता में कल वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 30 रन से हराया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रन से हरा दिया. श्रोताओं, अब रुख करते हैं देश के प्रमुख महानगरों की ओर, जहां से मिलेंगी हमें ताजा हलचल और वे अहम खबरें जिनका आपसे है सरोकार. तो आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से. दिल्ली सरकार ने मेट्रो परियोजना के 5वें चरण के अंतर्गत 16 किलोमीटर की लंबाई वाले 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है. इसके अंतर्गत 13 नए मेट्रो स्टेशन निर्माण किए जाएंगे. दिल्ली सरकार ने इस परियोजना को वर्ष 2028 में पूरा करने का लक्ष्य रखा है. एक रिपोर्ट.
इन कॉरिडोर में आरके आश्रम से इंद्रप्रस्थ जो सेंट्रल विस्टा के रास्ते जाएगा, तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज और एरो सिटी से इंदिरा गांधी हवाई अड्डा टर्मिनल 1 शामिल है. इसमें कुल 13 स्टेशनों में से 10 स्टेशन अंडरग्राउंड और 3 स्टेशन एलिवेटेड होंगे. यह विस्तार मौजूदा मेट्रो नेटवर्क के साथ इंटरचेंज की सुविधा प्रदान करेगा और हवाई अड्डे, वाणिज्यिक केंद्रों तथा आवासीय क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा. इस पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपए से अधिक है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि निजी वाहनों पर निर्भरता कम कर नागरिकों को स्वच्छ, कुशल और एकीकृत परिवहन प्रणाली उपलब्ध हो. इसके साथ ही यातायात पर दबाव कम होगा और प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में भी मदद मिलेगी. प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह.
दिल्ली विश्वविद्यालय आज से 14 तारीख तक साहित्य महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है. 3 दिवसीय इस महोत्सव में हर दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत कवि सम्मेलन, भजन कार्यक्रम और आदिवासी तथा लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां शामिल हैं.
News from Chennai. The Madras High Court has said that international reputation alone is insufficient under Indian trademark law to claim goodwill and rights over a trademark. The court made the observation while upholding trademark registrar's order rejecting a claim moved by a 7-Eleven International LLP over the trademark Big Bite for chocolates, biscuits and confectionery. Justice N. Anand Venkatesh confirmed the order passed by the trademark registrar allotting the mark to Hyderabad-based Ravi Foods Private Limited, which has used the mark in India since 2004. Vedanta Limited moved the Madras High Court challenging an order passed by the Tamil Nadu Pollution Control Board, which rejected its application seeking permission to reopen its new defunct Sterlite copper plant in Thoothukudi and permit the manufacture of green copper in the unit. The bench has ordered TNPCB and the state government to file their detailed response by 26th of this month.
और श्रोताओं, चेन्नई से रुख करते हैं महाराष्ट्र की ओर. महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की है कि राज्य परिवहन बसों में यात्रा रियायतों का लाभ लेने वाले यात्रियों के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC अब अनिवार्य होगा. इस कदम का उद्देश्य नकद रहित लेन देन को बढ़ावा देना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है. सभी बस डिपो पर जल्द ही पंजीकरण अभियान शुरू किया जाएगा. नया कार्ड 199 रुपए में उपलब्ध होगा, जबकि पुराने कार्ड धारक 149 रुपए में अपग्रेड कर सकेंगे.
लेट्स मूव ऑन टू बेंगलुरु वैष्णवी नाउ. Bengaluru has emerged as one of India's fastest appreciating real estate markets, with average property prices per square foot rising by 66% between 2019 and 2025, climbing from around 6,002 rupees to 9,963 rupees. This growth outpaced western cities like Mumbai 48% and Pune 59% and placed Bengaluru just behind Hyderabad 81% and Gurgaon 85% in price appreciation. The surge reflects strong demand from both investors and end users, driven by robust interest in IT corridors, expanding residential micro markets, and sustained institutional buying. Salaried employees in Bengaluru may soon get significant tax relief under the draft income tax rules 2026. The proposal seeks to extend the 50% house rent allowance HRA exemption currently available in Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai to more cities including Bengaluru, Hyderabad and Pune. The move reflects the rapid economic growth of these emerging startup and manufacturing hubs where housing costs have surged in recent years. However, the HRA exemption for other cities will continue to remain at 40%.
और अब कोलकाता की बात करते हैं. कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के नवनिर्मित इमारत में कल से आधिकारिक रूप से न्यायिक कार्यवाही शुरू हो गई. इस अवसर पर जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच बार एसोसिएशन द्वारा एक औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और अन्य पीठासीन न्यायाधीश उपस्थित थे. मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने अपने संबोधन में कहा कि बार और बेंच की उपस्थिति ने इस भवन में जीवन का संचार किया है. मुख्य न्यायाधीश ने आशा व्यक्त की कि सामूहिक सहयोग से इस संस्था की गरिमा और अखंडता आने वाले वर्षों तक बनी रहेगी.
वैष्णवी नाउ न्यूज़ फ्रॉम हैदराबाद. Municipal elections in Telangana concluded peacefully, apart from a few stray incidents, with electoral officials reporting a total voter turnout of 73.01% across the state. Voters turned out in large numbers to exercise their franchise. Specifically, the seven municipal corporations recorded a 66.05% turnout, while the 116 municipalities saw a much higher participation rate of 75.88%. Among the municipalities, Chotapal in Yadadri Bhuvanagiri district registered the highest turnout at 91.91%, whereas Nandikonda in Nalgonda district recorded the lowest of 59.68%. Female voters held a slight edge in participation with a turnout of 73.39% compared to 72.63% for male voters. Officials stated that the counting of votes will take place on the 13th of this month.
नीना, श्रोताओं को मौसम का हाल देते चलते हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई की बात करें तो आज आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने का अनुमान है। और कोलकाता में सुबह हल्की धुंध रहेगी और दिन में आसमान साफ रहेगा। बात करें तापमान की तो आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 22 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 31 डिग्री। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मेनली क्लियर स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 15 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्री। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर। द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन मिनिमम ऑफ 17 डिग्री एंड अ मैक्सिमम ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस।
श्रोताओं, अब चलते हैं इतिहास की ओर और पलटते हैं 12 फरवरी से जुड़े कुछ अहम पन्ने।
इन 1429 द बैटल ऑफ हेरिंग्स वाज फॉट ड्यूरिंग द 100 इयर्स वॉर व्हेन फ्रेंच एंड स्कॉटिश ट्रूप्स अनसक्सेसफुली अटैक्ड एन इंग्लिश कॉन्वॉय कैरिंग बैरल्स ऑफ हेरिंग्स नियर रोवरे। In 1877, the first news dispatch by telephone was sent between Boston and Salem, Massachusetts.
और नीना, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी। 1809 में आज के दिन विज्ञान की दुनिया को नई सोच देने वाले चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ। आगे चलकर उनके विचारों ने जीव विज्ञान की समझ को पूरी तरह बदल दिया।
In 1912, China adopted the Gregorian calendar. In 1919, the Rowlatt Act was passed by the Imperial Legislative Council, giving the British government extensive powers to suppress revolutionary activities in India.
और 1912 में चीन के इतिहास में एक युग का अंत हुआ जब मंचू वंश ने सत्ता छोड़ दी और देश में नए राजनीतिक दौर की शुरुआत हुई।
In 1922, Mahatma Gandhi halted the non-cooperation movement in India following the violent Chauri Chaura incident.
और 1928 में किसानों के अधिकारों के लिए महात्मा गांधी ने बारदोली सत्याग्रह की घोषणा की, जिसने जन आंदोलन को नई ताकत दी।
In 1935, the first secret demonstration of radio signals detecting aircraft was conducted by Robert Watson Watt and Arnold Wilkins at Deventry, England. In 1950, Albert Einstein warned against the development and dangers of the hydrogen bomb.
और 1975 में भारत के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में गर्व का क्षण आया जब देश को औपचारिक रूप से चेचक मुक्त घोषित किया गया। वहीं 2000 में विश्वविख्यात संगीतकार पंडित रविशंकर को फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया।
In 1995, Bonnie Blair set a women's world record in the 500-meter speed skating event with a time of 38.69 seconds. And in 1998, Intel unveiled its first graphics chip, the i740.
और 2009 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि देने की घोषणा की गई। और श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में आप याद करते हैं उन महान व्यक्तित्वों को जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। और पुण्यतिथि में पहला नाम है गोपी कुमार पोदिली का। गोपी कुमार पोदिला एक विद्वान, शोधकर्ता और भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उन्होंने विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में गहन अध्ययन और शोध कार्य किया। अकादमिक जगत में उनका योगदान नई पीढ़ी के शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहा।
Abraham Lincoln was an American statesman and lawyer who served as the 16th President of the United States from March 1861 until his assassination in April 1865. Lincoln led the nation through the American Civil War, its bloodiest war, and its greatest moral, constitutional, and political crisis. He preserved the Union, abolished slavery, strengthened the federal government, and modernized the U.S. economy. Born in a log cabin, Lincoln grew up on the frontier in a poor family. Self-educated, he became a lawyer, Whig Party leader, Illinois state legislator, and U.S. congressman from Illinois. Here's an excerpt from Abraham Lincoln's Gettysburg Address.
That we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
Sheena Phillips is an American singer and actress. She is a member of the pop vocal trio Wilson Phillips. Sheena played a significant role in the song Hold On's creation. She wrote the lyrics based on a powerful message of resilience and hope. This song was released in 1990 and became a massive hit, topping the US Billboard Hot 100 chart. Dear listeners, let's listen to this song, Hold On.
अब हम बात करेंगे भारतीय उद्योग जगत में भरोसे और गुणवत्ता का नाम रहे राहुल बजाज के बारे में। वे देश के जाने माने उद्योगपति थे। उन्होंने बजाज समूह को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारतीय मध्यम वर्ग की पहचान बना दिया। उनके नेतृत्व में बजाज ऑटो ने देश विदेश में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। स्पष्ट सोच, बेबाक विचार और नैतिक मूल्यों के लिए वे उद्योग जगत में अलग पहचान रखते थे।
Charles Darwin was an English naturalist, geologist, and biologist, best known for his contributions to the science of evolution. His proposition that all species of life have descended over time from common ancestors is now widely accepted and considered a foundational concept in science. Darwin has been described as one of the most influential figures in human history and was honored by burial in Westminster Abbey. Darwin published his theory of evolution with compelling evidence in his 1859 book On the Origin of Species. His scientific discovery is the unifying theory of the life sciences explaining the diversity of life. Darwin's early interest in nature led him to neglect his medical education at the University of Edinburgh. Instead, he helped to investigate marine invertebrates. Studies at the University of Cambridge encouraged his passion for natural science.
अब हम बात करेंगे मराठा इतिहास में सूझबूझ और कूटनीति का नाम रहे नाना फडणवीस के बारे में, जो एक कुशल राजनेता थे। वे पेशवा शासन के प्रमुख स्तंभों में से एक थे और कठिन राजनीतिक दौर में मराठा सत्ता को संभालने में उनकी भूमिका अहम रही। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जब मराठा साम्राज्य संकट में था, तब नाना फडणवीस ने भी अपने प्रशासनिक कौशल से उसे स्थिरता दी। मराठा इतिहास में उनका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है।
Joshua James Brolin is an American actor. Brolin has appeared in films such as The Goonies, Mimic, Hollow Man, Grindhouse, No Country for Old Men, American Gangster, Milk, True Grit, Men in Black 3, and many more. He appeared in the mid-credits scene of Avengers: Age of Ultron and reprised the role as the primary antagonist to both Avengers: Infinity War and Avengers: Endgame. Here's an excerpt from the same.
But random, dispassionate fare to rich and poor alike. They called me a madman. And what I predicted came to pass. With all six stones, I could simply snap my fingers. They would all cease to exist, and I call that mercy.
And then what?
I finally rest. Watch the sunrise on a grateful universe. The hardest choices require the strongest wills.
और श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं आधुनिक बांग्ला कविता को जन आवाज देने वाले सुभाष मुखोपाध्याय को, जो अपने समय के सबसे प्रभावशाली कवियों में गिने जाते हैं। उनकी कविताओं में आम आदमी का संघर्ष, सामाजिक असमानता और समय की सच्चाइयां बेहद सशक्त रूप में सामने आती है। उनकी कविता को सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का माध्यम बनाया। साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख और चर्चित रचनाओं में पदातिक, जतो दूर जानी और धूप छाया विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो आज भी पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है। अब हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा में अगर खलनायक शब्द को गरिमा मिली तो उसमें प्राण साहब का सबसे बड़ा योगदान रहा। आज ही के दिन 1920 में जन्मे प्राण हिंदी फिल्मों के जाने माने नायक और खलनायक तथा चरित्र अभिनेता थे। उनकी भारी आवाज, पैनी नजर और सधी हुई संवाद अदायगी ने पर्दे पर ऐसे किरदार रचे जो आज भी याद किए जाते हैं। चाहे मधुमति, उपकार, जंजीर या डॉन जैसी फिल्में हो, प्राण ने हर भूमिका में अलग छाप छोड़ी। खास बात ये रही कि उन्होंने नकारात्मक भूमिकाओं के साथ साथ मलंग चाचा जैसे मानवीय और सकारात्मक किरदार भी उतनी ही खूबसूरती से निभाए। भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 2001 में पद्म भूषण और 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अब सुनते हैं प्राण साहब की वही बुलंद आवाज और संवादों की ताकत जिसने पर्दे पर किरदारों को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि अमर कर दिया।
तुम्हारा वो रिकॉर्ड है तो हमारा भी एक रिकॉर्ड है। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए।
इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। अब मुलाकात हो गई।
जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो।
हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। एक मेम साहब है, साथ में साहब भी है। एक मेम साहब है, साथ में साहब भी है। मेम साहब सुंदर सुंदर है, साहब भी खूबसूरत है। दोनों पास पास है, बात खास खास है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले बोले, हम कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है।
Jagupathi Babu is an Indian film actor known for his works predominantly in Telugu cinema in addition to a few Tamil and Malayalam films. In a career spanning 25 years, Jagupathi Babu has starred in over 120 feature films and has received 3 Filmfare Awards and 7 State Nandi Awards. He received the Kalabhushan Award for his contribution to cinema by TSR Lalit Kala Parishad. Let's listen to this song from his movie.
గుండె నిండా గుడి గంటలు హువల గొంతులు ఎన్నో మోగుతుంటే, కళ్ళ నిండా సంక్రాంతులు సంధ్యాకాంతులు శుభాకాంక్షలంటే, వెంటనే పోచాను నీ చిరునామా ప్రేమ. గుండె నిండా గుడి.
अब हम बात करेंगे कर्नाटक संगीत की परंपरा को नई ऊर्जा देने वाले चित्रवीणा एन रविकिरण के बारे में। चित्रवीणा एन रविकिरण एक विलक्षण प्रतिभा के धनी संगीतकार हैं। महज 2 वर्ष की आयु में उन्होंने मंच पर पहली प्रस्तुति दी थी और 5 साल की उम्र में आकाशवाणी रेडियो पर उनका संगीत गूंजा। उन्होंने दुर्लभ वाद्य चित्रवीणा जैसे गुट्टुम वाद्य भी कहा जाता है को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाकर नई पहचान दिलाई। रवि किरण ने कई नई राग रचनाएं और ताल प्रयोग किए हैं और वे पारंपरिक संगीत को आधुनिक पीढ़ी से जोड़ने के लिए भी जाने जाते हैं। एक कलाकार के साथ साथ वे संगीत शिक्षक, शोधकर्ता और नवाचारक के रूप में कर्नाटक संगीत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अब सुनते हैं उन्हीं का ये खूबसूरत संगीत। आज भारतीय अमेरिकी अभिनेता अजय नायडू अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने संवेदनशील और यथार्थ से जुड़ी भूमिकाएं निभाई। उनकी अदायगी में गहराई और सच्चाई साफ झलकती है। वे हॉलीवुड और स्वतंत्र फिल्मों का जाना पहचाना नाम है। और श्रोताओं, आज भारतीय मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन का भी जन्मदिन है। उन्होंने देश के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया। श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और नीना को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।